श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आज भी आप प्रभु की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम अवश्य ही परमेश्वर के उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जिसे उसने हम सब के लिए रखा है। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक भाई बहन जब आपके वचन को सुने तो इस बात को समझने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें, आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 60 का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यशाया ने प्रभु यीशु के प्रथम और दूसरे आगमन को देखा परंतु अंतर नहीं कर पाया। प्रथम आगमन में प्रभु यीशु ने दुखी मन वालों को शांति और बंदियों को स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाया, परंतु दूसरे आगमन में वह परमेश्वर के पलटा लेने के लिए काम को करेगा, विद्रोह का दमन करेगा और पाप के कारण विलाप करने वालों को शांति देगा। तो आइए हम पढ़ें यशाया की पुस्तक 61 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यशाया भूगोल जानता था। जब उसने कहा सियोन तो उसका अर्थ सियोन ही था, दुनिया का कोई अन्य पर्वतीय स्थान नहीं है। सियोन यरूशलेम का सबसे ऊंचा स्थान है और यशाया सबसे परिचित है। वह विशेष करके यहूदियों के लिए कहता है, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी दूर करके हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, यह पलटा लेने के दिन के बाद प्रकट होगा। इसका विस्तार हम अध्याय 63 में देखेंगे। यह प्रभु राज की शांति और समृद्धि है। सुंदरता और राख से यशाया का तात्पर्य है दंड के स्थान पर आनंद और दुख के स्थान पर गीत। दुख और दंड के बाद आनंद और गीतों का गाना होगा। यशाया 61 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में से वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। इसराइल के सौंदर्यकरण की आवश्यकता है जिससे उसकी सुंदरता लौट आए जो आरंभ में थी। मेरे प्रियो, आज इसराइल में जो हो रहा है वह आश्चर्यजनक है। उसे देख डॉक्टर डब्ल्यू एफ अल्ब्राइट ने भविष्यवाणी में विश्वास करना आरंभ कर दिया। वे वो राष्ट्र हैं जो 2500 वर्ष अपने देश से बाहर रहा, आज पुनः अपने देश में है, इस कारण वे विश्वासी हो गए। परंतु हमें सावधान रहना है कि हम इसे भविष्यवाणी की पूर्ति न कहें। यह पद जिससे सौंदर्यकरण की चर्चा कर रहा है वह प्रभु राज के आरंभ में होगा और इस समय वह दिन नहीं आया है। यशाया 61 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। यह भविष्यवाणी का वास्तविक परिदृश्य है। तब हम यशाया 61 के 6 पद में पढ़ते हैं, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे कि वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। मेरे प्रियो, लिखा है कि वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। प्रभु राज में इसराइल विश्वासियों का याजक होगा। परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण प्रजा ही याजक हो। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी थी वे ये हैं, उनके पाप के कारण ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु प्रभु राज में ऐसा ही होगा और होना अवश्य है। यशाया 61 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे प्रियो, दूसरे शब्दों में इसराइल के भाग में अनंत आनंद होगा, वहां आनंद की परिपूर्णता होगी। यह कैसा महान दिन होगा। यशाया 61 के 8 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उस समय उनके जीवन धार्मिक कृत्यों की सुंदरता बढ़ाएंगे। मित्रों, आपने देखा है कि इसराइली धर्म संबंधित परंपराओं को निभाते थे, परंतु परमेश्वर प्रसन्न नहीं था क्योंकि उनका मन उसमें नहीं था, परंतु भविष्य में बदलाव आएगा। यशाया 61 उसके 9 पद में लिखा है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी, जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। उस समय यहूदी विरोध समाप्त हो जाएगा और यहूदी सहयोग का आरंभ होना होगा, क्योंकि उस समय वे परमेश्वर के सच्चे गवाह ठहरेंगे। आज न तो इसराइल और न ही कलीसिया परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रही है, जबकि मेरा मानना यह भी है कि हम परमेश्वर की योजना में कार्य कर रहे हैं और वह उसने जैसा कहा है वैसा ही हो रहा है। प्रभु यीशु ने चिताया था कि हम एक समय धर्म का दिखावा तो करेंगे परंतु हम सामर्थ का इनकार करेंगे। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रभु राज का आनंद। यशाया के पुस्तक 61 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हिन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है। लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। वे बड़ा आनंद मनाएंगे। काश आज अधिकाधिक विश्वासियों को आराधना में जाने का आनंद प्राप्त होता। काश अधिकाधिक आनंद वे प्राप्त करते। काश बाइबल अध्ययन हम सबके लिए उत्साह का कारण होता। ऐसा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि ऐसा ही हो। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर से ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हिन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है। मेरे प्रियो, मसीह कह रहा है और वे सब जो उसके हैं स्तुति के भजन में उसके साथ हो ले, वे प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। आज हमारी समस्या यह है कि अनेक विश्वासी प्रभु में आनंदित नहीं हैं और आनंद नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे सहभागिता से बाहर हैं, उनके जीवन में पाप है, वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, वे अपनी ही इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। यशाया 61 उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सांसारिक आशीषें और भौतिक उत्थान ये दोनों तो होंगे, परंतु उस समय वास्तविक आशीष आत्मिक रीति से होगी। यहां पर अध्याय 61 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 62 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे जिसका विषय है इसराइल के लिए मसीह की कामना, प्रभु राज की आशा, उस भावी दिन की घोषणा। मेरे मित्रों, इस अध्याय में हमारे सामने इस आशावित आनंद के लिए मसीह की कामना व्यक्त है। विश्वासियों के मन में भी इस आनंद की कामना होना आवश्यक है। विश्वासियों के लिए आज खतरा इस बात का है कि हम प्रभु के आगमन की कामना इसलिए करते हैं कि वह हमें इस कष्ट भरे संसार से उठाकर ले जाए। हम मसीह के आगमन को बचाव का एक साधन बनाए हुए हैं। हम अपने आप को परेशानियों में फंसा लेते हैं और फिर चाहते हैं कि परमेश्वर आकर हमें बचाए। सेमिनारी में मेरा एक अच्छा मित्र था, परंतु वह विनोद प्रिय नहीं था। हम सब विद्यार्थी उससे बहुत छेड़छाड़ करते थे। कभी वह रात में बाहर जाकर सितारों को देखता और कहता, उह काश प्रभु आ जाए। वह प्रायः ऐसा उसी रात को करता था जब अगले दिन उसकी इब्रानी भाषा की परीक्षा हो। इब्रानी भाषा बहुत ही कठिन थी। वह प्रभु के आने की कामना इसलिए करता था कि उसे इब्रानी पढ़ने से छुटकारा मिल जाए। दीक्षांत समारोह में उसने अपनी उपाधि प्राप्त की और अगले दिन उसने एक सुंदर लड़की से विवाह भी कर लिया। दीक्षांत समारोह से एक दिन पूर्व रात में वह बाहर गया और आकाश को देखकर कहा, काश प्रभु कुछ दिन ना आए। जी हाँ, हम में से अधिकांश के साथ ऐसा ही होता है। यदि हम परेशानी में हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाए। हम परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आएं, अपने मनों से उन पापों को निकाल दें ताकि हम पवित्रता के साथ उसके पास आ सकें। मेरे मित्रों, आइए आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसराइल के लिए मसीह की मनोकामना। आइए आप मेरे साथ यशाया की पुस्तक 62 अध्याय उसके एक पद को निकालें। लिखा है, सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। यरूशलेम को आज शांति नहीं है क्योंकि उसका मसीहा वहां नहीं है। वह अभी परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और यरूशलेम में राज्य करने की प्रतीक्षा कर रहा है, धार्मिकता का राज। आप उसे पवित्र नगर कह सकते हैं, परंतु वह पवित्रता को छोड़कर सब कुछ है। परंतु एक दिन वह पवित्र होगा और सेनाओं के यहोवा के द्वारा यह सब कुछ होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से यह नहीं होगा। मेरे विचार में प्रभु की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है जो ऐसा कर पाएगा। संसार में अन्य कोई शांति स्थापित नहीं कर पाएगा और ना ही कर सकता है। केवल परमेश्वर यहोवा ही की धुन यह सब कुछ संभव करेगी। मेरे प्रियो, यशाया और प्रत्येक ईश्वर भक्त जन जो मन में यह लालसा रखते हैं कि वे शांति को ला पाएंगे, यह असंभव है। केवल परमेश्वर ही इसे कर सकता है। संपूर्ण सृष्टि और सब विश्वासी भविष्य की आशा में वर्तमान दशा में कहरते हैं। मसीही तीर्थ यात्रियों, क्या आप इस पृथ्वी की यात्रा से थक गए हैं? क्या आप परमेश्वर पिता के परिवार की संगति की लालसा करते हैं? यह एक प्रश्न है कि प्रत्येक विश्वासी इस पर मनन करे। यशाया 62 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। नया हृदय, नई परिस्थिति, नई पृथ्वी, नई धार्मिकता एक नए नाम की मांग करते हैं। मैं नहीं जानता कि नया मैं कैसा दिखूंगा, परंतु मैं प्रसन्न हूं कि यह पुराना मैं नहीं रहूंगा। हम सब नए होंगे और नए यरूशलेम में होंगे। भविष्य का यह कैसा सुंदर चित्रण है। मुक्ति कलीसिया की ही नहीं, इसराइल वरन संपूर्ण पृथ्वी की होगी। आज हम कहरते हैं और पीड़ित होते हैं और मुक्ति के उस महान दिन की प्रतीक्षा भी करते हैं। यशाया 62 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। इसराइल की भी नई अवस्था होगी। यशाया 62 के 4 में लिखा है, तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझ से प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, शब्द त्यागी, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय से ही इसराइल का यह परिदृश्य वरन नाम रहा है। यदि आप आज उस देश को देखें तो आपके मन में पहला विचार उठेगा, त्यागा हुआ देश, उजड़ा हुआ देश। आज उस देश का यही विवरण है। परंतु वह दिन आता है जब इसराइल हेप्सिबा कहलाएगा, अर्थात प्रफुल्लित। वह देश एक आनंददायक स्थान होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इसराइल आज की स्थिति में अच्छा नहीं लगता है, परंतु भविष्य में वह एक प्रफुल्लित देश होगा। तेरी भूमि व्यूला कहलाएगी। व्यूला का अर्थ है सुहागिन। कहने का अर्थ है कि राजा उसकी सुरक्षा के लिए उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति का अर्थ है आनंद। यशाया 62 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। जी हाँ, परमेश्वर इसराइल से ऐसा प्रसन्न होगा जैसे दुल्हा दुल्हन से। हम आगे देखेंगे प्रभु राज की आशा। यशाया 62 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरवे बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। यह लालसा संक्रामक अर्थात दूसरों को प्रभावित करने वाली है। प्यासा प्राण पानी के लिए तरसता है। प्रत्येक उचित विचार रखने वाला मनुष्य यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेगा और उस दिन की लालसा करेगा जब वहां शांति व्याप्त होगी। यशाया 62 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहेशकेल की पुस्तक 21 अध्याय के 27 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आ जाए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा कि वह राज करे। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि उस भावी दिन की घोषणा। अब हम उस भावी दिन के विषय में परमेश्वर की घोषणा को देखेंगे। यशाया 62 उसके 11 पद में लिखा है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। इस पद से प्रकट होता है कि यह घोषणा आज के युग के प्रसंग में है। इसराइल का उद्धार परमेश्वर के समग्र उद्धार योजना का एक भाग है। हमें प्रत्येक इसराइली के लिए सुसमाचार पहुंचाना आवश्यक है। आज उनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का अर्थ है इसराइल के लिए पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करना। यशाया 62 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज इसराइल पवित्र जन समूह नहीं कहलाता है, वे मुक्ति प्राप्त नहीं है। यरूशलेम आज एक त्यागा हुआ नगर है, परंतु भविष्य में एक दिन परिस्थिति अलग होगी। परमेश्वर के उद्धार का अनुभव इसराइल की प्रजा में परिवर्तन ले आएगा और साथ ही भौतिक संसार में भी। इसराइल उस समय पवित्र प्रजा कहलाएगा, उस समय वह देश मनोकामना का केंद्र होगा। आज तो इसका विपरीत ही दशा है। हमारा भविष्य कैसा महान है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 62 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 63 से देखेंगे, जिसका विषय है दंड के दाखरस का कुंड। क्रोध में भी उद्धारकर्ता दया का स्मरण करता है। इस अध्याय के प्रथम 6 पद पिछले अध्याय के विपरीत हैं। ये पद वास्तव में यशाया के पुस्तक के इस भाग के प्रसंग से बाहर हैं, परंतु प्रभु राज से पूर्व दंड का आना आवश्यक है। यह तो सदा ही परमेश्वर की कार्य प्रणाली में रही है। मेरे मित्रों, यशाया के पुस्तक 53 अध्याय उसके 1 पद में प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का विवरण है कि उसमें मानव सुंदरता थी ही नहीं, परंतु यहाँ वैभव और सुंदरता की बात की गई है, जो प्रभु के दूसरे आगमन के संबंध में है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का समय परमेश्वर के पलटा लेने का दिन होगा, जैसा हम देख चुके हैं। यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में आप यशाया के पुस्तक 61 अध्याय उसके 2 पद और लूका की तुलना करके देख सकते हैं। इस अध्याय का प्रथम भाग पढ़ने में मुझे प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रकोप दंड देने में दाखरस के कुंड की तुलना में रखा गया है। अध्याय का दूसरा भाग प्रभु यीशु की प्रेममय दया का वर्णन करता है, जो वह अपनों के प्रति प्रकट करेगा। तो आइए देखें दंड के दाखरस का कुंड। यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। यहाँ लेखन शैली उत्तरवादी है। एदोम से आने वाले के विषय जो प्रश्न करते हैं, वे उसके वैभव और सौंदर्य से अभिभूत हैं। वह पूर्व दिशा एदोम से आता है और लिखा है कि वह जैतून के पर्वत पर अपना पांव रखेगा। जी हाँ, यह पर्वत पूर्व दिशा में है। एदोम देश का बोस्रा भौगोलिक स्थान तो है, परंतु हमें आत्मा की बात भी नहीं टालना है कि एदोम देश एवं जाति शारीरिक लालसा का प्रतीक है। यहाँ हम मनुष्य का न्याय देखते हैं। यशाया 63 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वालों के समान है? उस युग में पुरुष दाखरस के कुंड में पांवों से दाख को रौंदकर रस निकालते थे। दाख का लाल रस निकलकर उनके वस्त्रों पर लगता था। इस पद में इसी दृश्य का वर्णन किया गया है। अतः यह प्रश्न पूछा गया है, दर्शक गण पूछते हैं कि उसके सुंदर वस्त्र में लगे ये लाल दाग, ये रंग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह दाख रौंदकर आ रहा है। अब इसका उत्तर भी आप सुने। यशाया 63 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह उसका लहू नहीं है, वह अन्य मनुष्यों का लहू है। आरंभिक कलिसियाई पितरों ने इन 6 पदों को प्रभु यीशु के प्रथम आगमन से जोड़ दिया था। उन्होंने दाखरस के कुंड को प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों का प्रतीक बताया। यह व्याख्या प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उसके वस्त्रों पर अन्य मनुष्यों के लहू के दाग थे। यह पलटा लेने का दिन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से यह संबंधित है। प्रभु यीशु ने यशाया 61 अध्याय उसके 2 से पढ़कर इसे स्पष्ट कर दिया था कि जैसा लूका के वृतांत 4 अध्याय उसके 18 से 20 में व्यक्त है। यीशु ने अपने प्रथम आगमन में अपना लहू बहाया था, परंतु यहाँ जो चित्रण है वह वैसा नहीं है। पहली बार जब वह आया था तब वह रौंदा गया था, परंतु इस बार वह रौंद रहा है। यह दंड का एक भयानक चित्रण है। अब उसके दंड देने के कारण बताए गए हैं। यशाया 63 के 4 पद में लिखा है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। वह अपने मुक्ति प्राप्त जनों को उनके निर्दयी उत्पीड़कों से बचाने आया है। यह पृथ्वी पर उसका दंड है जिसे पलटा लेना कहा गया है। अब हम यशाया 63 के 5 पद में पढ़ते हैं, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था, तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देकर अकेले ही उद्धार की व्यवस्था की थी और दंड देने के लिए भी वह अकेला ही आएगा। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो निश्चय ही आप उस भयानक दंड से बच जाएंगे, क्योंकि उसी ने उद्धार दिया है, उसकी व्यवस्था की है। यदि आज हम उसका इनकार करते हैं तो निश्चय ही वह आने वाले समय में जब वह इस पृथ्वी पर आएगा तो मेरा और आपका न्याय करेगा और हम दंड के भागी होंगे। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सभी श्रोता मित्रों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
संपूर्ण जीवन में